मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 14 अक्टूबर 2019 के FEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग एसे के पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे 2019 का जो अभी मेंस का एग्जाम हुआ है उस पर बेस्ड है। और इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में मैंने केवल एक इशू पर आपसे बात की थी और वो था कि जो एसे का पेपर होता है वो सरल भी होता है और कठिन भी होता है, और सरल क्यों होता है इसके बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी थी। और मुझे लगता है कि जो मैंने जानकारियां दी हैं यदि आप अपने ऊपर अप्लाई करके सोचेंगे तो शायद वो जानकारियां आपको सही मालूम पड़ेंगी। और सच पूछे तो यह जो जानकारी है सरल और कठिन की कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक स्थिति से सीधे सीधे जुड़ी हुई भी है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से जब हम इस पर विचार करते हैं, अपने पर अप्लाई करते हैं, तो हमें यह पेपर बहुत सरल लगता है और शुरू से सरल लगता आ रहा है। अब मैं इस इशू पर बात करूंगा कि वास्तव में यह काफी कठिन है। क्यों कठिन है, आइए अब इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। और इसके विचार करने की भी मुझे लगता है कि से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इस मायने में कि 8 निबंध टोटल पूछे जाते हैं, सेक्शन ए से 4 पूछे जाते हैं जिसमें से एक लिखना होता है, और सेक्शन बी में 4 दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक लिखना होता है। आप दोनों में से एक एक निबंध जिसे आप सबसे अधिक सरल समझ रहे हों या अपने लिए सबसे अधिक उपयुक्त मान रहे हों उनका आप चुनाव कर लीजिए, और चुनाव करने के बाद उस पर ऐसे लिखने के लिए बैठ जाइए। मैं सच कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को सुनकर प्रैक्टिस में उसे लाएंगे भी। प्लीज आप बैठ जाइए, कागज कलम ले लीजिए और बैठ जाइए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए, लिखने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो यह है कि आप जिस पर भी ऐसे लिखने जा रहे हैं उसके बारे में पहले कुछ पॉइंट्स निकाल लें कि मुझे अपने इस ऐसे में ये पॉइंट्स कवर करने हैं जो सामान्यतया किया ही जाना चाहिए। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट हैं तो उस इशू को उठाइए और सीधे सीधे लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका निबंध हो वो 1000 से 1200 शब्दों के बीच में ही हो। देखिए, जो एग्जामिनेशन का पेपर होता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि जो शब्दों की मर्यादा है आप उसका पालन करें, राइट? तो 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। इसके बीच के शब्द ले लीजिए, औसत 1100 शब्दों में। अब आप पाएंगे कि जब आप लिखने बैठे हैं तो कुछ समय तक तो आप लिख पा रहे हैं, मतलब 200, 300, 400 और अधिकतम 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स तक लिखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में कुछ फैक्ट्स तो हैं ही, कुछ उदाहरण हैं, कुछ शेर व शायरी हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ फिलोसफिकल थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं उस विषय के बारे में, इसीलिए उस विषय को आपने चुना भी है। और जब आप लिखने बैठते हैं तो मान करके चलिए कि 500 शब्दों में वह सब आप लिख चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि 600 शब्द आप कहां से लाएंगे। यहां से कठिनाई का दौर शुरू होता है, बहुत जबरदस्त दौर शुरू होता है। अब आप करते क्या हैं? सामान्यतया मैंने देखा है कि स्टूडेंट फिर जो पहले लिख चुके हैं यानी कि जो बिंदु पहले आ चुके हैं उन्हीं को अब थोड़ी सी बदली हुई भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब उसको फैला रहे हैं। मतलब एक रबर का जो अपना आकार है वो आकार तो है ही, वो 500 शब्दों का हो गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो रबर है ये 1 फीट का नहीं बल्कि इसे तो 2 फीट का होना है। तो अब आप इसी रबर को खींच रहे हैं, नया रबर जोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इसी को खींच रहे हैं, यानी कि पहले जो बात आप कह चुके हैं आप उन्हीं बातों को अब बदली हुई शब्दावली में डिफरेंट लैंग्वेज में दोहरा रहे हैं। नो डाउट कि जो ऐसे राइटिंग है अपने आप में कहीं ना कहीं लैंग्वेज की भी डिमांड करती है। इसके बारे में मैं यहां भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम तो सीधे सीधे अभी पेपर के बारे में जान और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कैसे लिखा जाना चाहिए और उसके लिए क्या होने चाहिए, कैसे तैयारी की जानी चाहिए, उस पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखें, मैं तो केवल पेपर की एनालिसिस कर रहा हूं। तो आप पाएंगे कि अब संकट शुरू हो गया और अब आप जो भी कर रहे हैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका साफ मतलब हुआ कि आपने ऐसे सिर्फ 500 शब्दों में लिखा है, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आपने ऐसे सही तरीके से नहीं लिखा है। यह है दोस्तों कठिनता, जो ऐसे को लिखने में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह सरल भी है और यह कठिन भी है। अब आइए मैं कुछ दूसरे बिंदुओं पर आऊं। एक बात जरूर है फ्रेंड्स कि इस बार के अगर मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स को ले लूं, एसे और जनरल स्टडीज के चारों पेपर्स को, तो डेफिनेटली इस बार के सभी पेपर पिछले साल की तुलना में मुझे थोड़े से सरल मालूम पड़ रहे हैं। सरल इस मायने में कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो पैटर्न है पिछले साल की तुलना में कम जटिल है। हालांकि जो अंतर भी है वो 19-20 का ही है, थोड़ा सा है, लेकिन जो जटिलता है वो कम हुई है। अगर 19-20 भी है तो वो जटिलता के कम होने की तरफ है, अधिक होने की तरफ नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि हम ऐसे के पेपर की बात करें तो देखिए, जो पिछले साल को सब्जेक्ट दिए गए थे, टॉपिक दिए गए थे, उनको मैं एक कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूं तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, इनके बारे में तुरंत हमारे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम बिल्कुल लिखने ही लगे। जबकि इस बार के क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे थे कि आप सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ, इस पर तो कुछ लिखा ही जा सकता है। तो देखिए, पिछले बार के मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूं जो बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। अब आप देखिए, अगला है, अतीत मानवीय चेतना और मूल्यों का एक स्थायी आयाम है जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता है बल्कि उसकी पुष्टि करता है। भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य। जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। बस आप सुन लीजिए, बस आपने सुन लिया तो आपने महसूस किया होगा कि नहीं, पिछले साल के जो टॉपिक थे वो इस साल की तुलना में थोड़े से गरिष्ठ थे, थोड़े से भारी थे, दिमाग तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उनके लिए बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पर दबाव डालना पड़ेगा, थोड़ा तनाव पैदा होगा, चीजें निकलेंगी लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि इस साल का क्वेश्चन पेपर, यानी कि हम ऐसे की बात कर रहे हैं, तो अपेक्षाकृत सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, पिछले साल जो हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है उसकी थोड़ी सी झलकी मैं आपको देना चाहूंगा कि उनके स्कोर कैसे रहे हैं। और ये स्कोर मैं आपको शुरू के जो कुछ स्टूडेंट रहे हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, शुरू के जो 10 स्टूडेंट हैं लगभग उनके स्कोर आपको बता रहा हूं। नाम लेकर के बताने की जरूरत नहीं है, इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा और आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे और एक प्लान भी बना सकेंगे कि मुझे ऐसे में इतना तो स्कोर करना ही है। देखिए, जो हमारे टॉपर हैं, जो कनिष्क कटारिया, उनका स्कोर रहा है 133 आउट ऑफ 250। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट है, फर्स्ट 10 को ही मैं ले रहा हूं, जो टॉपर हैं, जो फर्स्ट 10 जो स्टूडेंट हैं उनके जो स्कोर हैं एवरेज आप समझ लीजिए कि 120-125 के आसपास हैं। 120-125, अगर हम 125 मान लेते हैं, इसका मतलब है कि 50%। मैं यहां एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस एसे के पेपर में 60% स्कोर करना मुश्किल बात नहीं है। 60%, 60% का मतलब होता है 150 मार्क्स। और खासकर जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, स्पेशली जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या रहे हैं, उन्होंने इससे भी अधिक स्कोर किया है। निशांत जैन, आप नाम से बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं, वो लिटरेचर के स्टूडेंट थे, उन्होंने ऐसे में शायद इससे कम तो नहीं 160 स्कोर किया है, इससे अधिक स्कोर किया होगा, उसके आसपास स्कोर किया 160। क्यों आप 60% तक इसमें स्कोर कर सकते हैं? जब आप मार्कशीट उठा करके स्टूडेंट्स की देखेंगे तो उन ऑप्शनल सब्जेक्ट में उनके स्कोर देखिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो उनके स्कोर होते हैं वो लगभग आपको बाकायदे 60% के आसपास दिखाई देंगे। 60% और ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतना स्कोर आपको करना ही चाहिए। देखिए, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्यों 60% स्कोर कर लेते हैं, जबकि आप देखिए कि जनरल स्टडीज में 45% भी अगर स्कोर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उसका कारण ये नहीं है कि जनरल स्टडीज में आपको मार्क्स नहीं दिए जाते, इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस फिक्स है, आपने उस सिलेबस के हिसाब से खूब अच्छी तैयारी कर ली है, आपको मालूम है कहाँ से पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। जबकि जनरल स्टडीज में ऐसा नहीं होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 में मुझे लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट होगा या उसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी जिसने 20 में से 12-13 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हो, मतलब ठीक उसी लेवल के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो कर लेता है। उसमें से फिर 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको वो बीच बीच का लिख पाता है और 2-3 टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो उससे छूट ही जाते हैं, तो इसलिए स्कोर कम हो जाते हैं। तो जो ऐसे का पेपर है मान करके चलिए कि वह आपके लिए एक स्कोरिंग पेपर है। कुछ के मैंने आपसे कहा था कि मैं मार्क्स आपको बताऊंगा, अब मैं उनकी रैंक नहीं बता रहा हूं, 1 से 10 तक के स्टूडेंट हैं, 133, 132, 113, सोचिए कि जो फिफ्थ रैंक के में जो आई है सृष्टि जयंत देशमुख, उनका स्कोर रहा है ऐसे में केवल 113, सोचिए कि कितना कम है। जो टॉपर है वो 133 हैं और ये 113 हैं, 20 मार्क्स यही उनके कम हो गए हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में स्पेशली उन्होंने जनरल स्टडीज में इतना अच्छा स्कोर किया है कि उन्होंने सब कवर कर लिया। फिर जो 7th रैंक पर है उनके भी 113 ही हैं, फिर है 123, 134, 146, 157, एक के 157 हैं गुंजन द्विवेदी के, फिर है 143। दोस्तों ये कुछ स्कोर हैं और इन स्कोर से आपको ये अनुमान लग गया होगा कि यह कम से कम एक ऐसा पेपर तो है जिसमें आप 50% स्कोर कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप निबंध छोड़ करके नहीं आएंगे और जो भी लिखेंगे तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से ही लिखेंगे। और मुझे लगता है कि जो हम फर्स्ट 20 के स्कोर देखते हैं ऐसे में, उनके थोड़ा सा कम होने के पीछे कारण ये भी हो सकता है, तो आप जान रहे हैं कि आजकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं और फर्स्ट 20 में भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं या साइंस बैकग्राउंड के होते हैं ऐसे में स्कोर करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट होते हैं जो एकेडमिक समय में वो पढ़ रहे होते हैं तो बहुत वेरिएशन वाले नहीं होते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं कई कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरे तरह के विषय भी वो पढ़ते रहते हैं, विषय पर उनकी थोड़ी सी पकड़ हो जाती है अलग अलग विषयों पर, और फिर भाषा तो थोड़ी सी उनकी बेहतर हो ही जाती है। तो इस तरीके से ऐसे के लिए सच पूछे तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो थोड़े से फायदे की स्थिति में होते हैं, बशर्ते कि वो इसका लाभ ले सके। तो मित्रों ये मैंने कुछ बातें आपको ऐसे के पेपर के बारे में बताई है। देखिए इसके जो दो सेक्शन होते हैं, उसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो उसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करती हैं, दो तीन आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। एक है आपका जनरल स्टडीज़ का जो फोर्थ पेपर है, जो एथिक्स इंटीग्रिटी का पेपर होता है, वो इसमें आपकी बहुत मदद करता है। यानी कि जब आप उस पेपर की तैयारी करें, पढ़ाई करें, तो थोड़ा सा ध्यान से करें और ये मान करके चलें कि इसमें आपको दोहरा फायदा मिलना है इस पेपर की तैयारी से, फोर्थ और साथ ही साथ एसे के पेपर से। दूसरा, आपने महसूस किया होगा अगर आप मेरे लाइफ मैनेजमेंट को सुन रहे होंगे तो दोस्तों आप इस बार जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, लाइफ मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ टॉपिक याद करने की कोशिश कीजिए जिसे मैं विषय कहता हूं। आप पाएंगे कि इसमें कितने सारे विषय ऐसे हैं जो बकायदे लाइफ मैनेजमेंट में कवर किए गए हैं, और चलिए सब्जेक्ट को सीधे अगर कवर नहीं किया भी जाए तो इतनी सारी बातें मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट में समेट करके चलता हूँ, उसमें बायोग्राफी भी है, उसमें उदाहरण भी हैं, उसमें घटनाएं भी हैं, उसमें शेर व शायरी भी है, उस समय उसमें आज के जो लोगों की जीवन की स्थितियाँ हैं वे सब भी हैं, उसमें फिलासफी भी है, फिलासफर्स की बातें भी हैं। सोच करके देखिए कि उसमें कितनी सारी बातें कवर होती है। मेरा विश्वास है कि अगर आप लाइफ मैनेजमेंट रेगुलर सुन रहे हो तो बहुत अच्छे इससे आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सुनने के बाद उन पर थोड़ा सा विचार करें, बहुत अच्छी जो बातें लगती हैं उन्हें थोड़ा सा नोट भी कर लें। तो दोस्तों ये आपके सेक्शन 1 के लिए है, और सेक्शन जो 2 है डेफिनेटली उसमें तो देखिए जनरल स्टडीज का बहुत बड़ा रोल है। सामान्यतः अगर आप ऐसे उठा करके देखें तो एक ऐसे इकोनॉमी वाले सेक्टर से आ जाता है, एक ऐसे जो है ना एक सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन उसको आप सोशल डेवलपमेंट में ले लीजिए। सामान्यतः मीडिया से एक आ जाता है, साइंस का एक क्वेश्चन होता ही होता है जो बहुत ही जनरल साइंस से होता है, तो इस तरीके से आप सच पूछे तो सेक्शन बी के लिए तो आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है, जनरल स्टडीज में वो कवर हो जाता है। सेक्शन ए के लिए आपकी तैयारी जो है वो फोर्थ पेपर के साथ ही हो जाती है। अगर आप और भी कहीं से थोड़ी सी चीजें नोट करते चले जाएं, उनको याद रख लें, अपने दिमाग में थोड़ा सा रचा बसा लें, तो डेफिनेटली वो एक बेहतर ऐसे लिखने में आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। मेरा असेसमेंट ये है फ्रेंड्स कि इस बार का जो ऐसे पेपर है इसमें स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और एवरेज जो मैंने अभी 125 बताया है फर्स्ट 10 स्टूडेंट का, तो ये इस बार लगभग लगभग 130-135 तक तो मेरा विश्वास है कि पहुंच ही जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।